दिन भर तारीख 1 नवंबर दिन रविवार आपके साथ मैं अशोक कुमार। बिहार में चौथे चरण में लगभग 58% वोट पड़े, क्या रहे अहम मुद्दे?
बिहार खुशहाल हो, महंगाई कम हो, यही चाहते हैं और क्या।
हम लोग तो विकास जो हम लोगों को देखेगा जो।
उधर कटिहार में पीएम मोदी की रैली, उठाया पलायन का मुद्दा।
ये रोजगार के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है, वो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
और बीबीसी की खास पेशकश फैला उजियारा में, आज बात मुगलों की नाक में दम करने वाले मलिक अंबर की।
आज के भारत में मलिक अंबर को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो राजाओं की किस्मत।
लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 7 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 5 बजे तक 57.59% वोटिंग हुई थी। इन 55 सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी 26, जेडीयू 21 और कांग्रेस 8 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी थी। एनडीए की ओर से भाजपा के 42, लोक जनशक्ति पार्टी के 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौर के चुनाव में वरिष्ठ मंत्री रमई राम के अलावा रंजू गीता और मनोज कुशवाहा की किस्मत का फैसला होना है। दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के बीच नियमित रूप से आपसी बातचीत पर सहमति बन गई है। पिछले 3 साल में पहली बार तीनों देशों के नेताओं की दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मुलाकात हुई, जिसमें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क विन हे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग ने हिस्सा लिया। एक साझा प्रेस वार्ता में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा, इस क्षेत्र के साथ साथ जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि हमने राष्ट्रपति पार्क के बुलावे पर पिछले 3.5 साल में पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता की। क्षेत्रीय मुद्दों में खास तौर पर उत्तर कोरिया की बात करें तो मैंने दोनों नेताओं से अपहृतों के मुद्दों को सुलझाने की अपील की है। ये एक बड़ी उपलब्धि है कि तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष उत्तर कोरिया से ये कहने के लिए सहमत हैं कि उसे उकसाने वाले कदम न उठाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समझौते पर कायम रहना चाहिए। ये थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की में पिछले 5 महीनों में दूसरी बार आम चुनाव हो रहा है। संवाददाताओं का कहना है कि ये चुनाव राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगान की एके पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। तुर्की में गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम होने के बाद राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिला तो स्थिर सरकार बनाएंगे, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस चुनाव से लोगों को एर्दोगान की बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति को रोकने का मौका मिला है। तुर्की में कुर्द और इस्लामी लड़ाकों के हमलों के बीच सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ग्रीस में तटरक्षक दल ने कहा है कि तुर्की से प्रवासियों को ला रही एक नाव के डूब जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। 10 शव नाव के केबिन से मिले हैं, जबकि 11वां शव सेमोस द्वीप के तट पर मिला है। प्रवासन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का कहना है कि अक्टूबर के महीने में ही यूरोप आ रहे 430 प्रवासियों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा के कार्यक्रम दिन भर में। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। बात शुरू करते हैं बिहार से, जहां आज चौथे चरण में 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में रिकॉर्ड 57.59% वोट पड़े, जो अब तक के चारों चरणों में सबसे ज्यादा है। आज सबसे ज्यादा मतदान पूर्वी चंपारण जिले में रिकॉर्ड किया गया, जहां 59.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा आज ही पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान में भी वोट पड़े। वोटिंग के दौरान मतदाताओं के लिए कौन से मुद्दे अहम रहे, ये जानने की कोशिश की मुजफ्फरपुर में हमारे साथी मनीष शांडिल्य ने और कुछ लोगों से बात की।
बिहार खुशहाल हो, महंगाई कम हो, यही चाहते हैं और क्या।
हम लोग तो विकास जो हम लोगों को देखेगा, जो यहाँ के विकास करेगा उस लोग को हम लोग वोट देंगे। विकास यहाँ तो हमारे यहाँ मैंने न सही से रोड बना है, न हम लोगों को जनप्रतिनिधि जो गरीब है उसको लोग देखता है। तो जो जनप्रतिनिधि हम लोगों को देखेगा, हमारे समाज को देखेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, उसको हम लोग देंगे।
नई सरकार आवे, अच्छा काम करे और नवयुवक लोगों को रोजगार मिले। पढ़ लिखे लोग बेकार बैठे हुए हैं, छुटकारा मिले इस सबसे। महंगाई कम हो, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो।
गुड गवर्नेंस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, मुख्य मुद्दा तो यही है। एंड अपार्ट फ्रॉम सब चीज़ों के, इसमें सबसे प्रमुख होता है सुरक्षा व्यवस्था।
ये थे कुछ मतदाता जो बता रहे थे कि चुनाव के बाद बनने वाली सरकार से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। पिछले चरणों की तरह आज भी मतदान में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोट डालने वाली महिलाओं की संख्या 60.40% रही, तो वहीं मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले पुरुषों की संख्या थी 54.20%। आज के मतदान में और क्या कुछ खास रहा और पांचवें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की हलचल क्या कुछ रही, आज सुनिए पटना से नीरज साहे की ये रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रायः शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य के 7 जिलों पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान के 55 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने राजनीति में बाहुबली प्रत्याशियों और नेताओं के वोट बल को तौल दिया है। बाहुबली कहे जाने वाले सांसद सतीश दुबे समेत पूर्व सांसद आनंद मोहन, शहाबुद्दीन और काली पांडे के इलाकों में भी आज ही वोट पड़े हैं। इस चरण के चुनाव में 776 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। आज के चुनाव के मुख्य प्रत्याशियों में नीतीश सरकार के मंत्री रमई राम और रंजू गीता मिश्रा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, रेणु देवी और पूर्व सांसद लवली आनंद हैं। तमाम राजनीतिक गोलबंदी के बीच सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और हर दिन नए नए मुद्दे भी उठा रहे हैं। आज कटिहार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही कहा।
पढ़ाई, कमाई और दवाई, बिहार के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये रोजगार के लिए बिहार छोड़ना पड़ता है, वो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, बिहार का बेटा बिहार के माँ बाप के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोपों के तीर छोड़े।
सिवान में जाके भाषण किया अमित शाह ने कि यहाँ जो गठबंधन जीतेगा, हम लोग का गठबंधन, तो पाकिस्तान में पड़ाका बजेगा, शहाबुद्दीन जेल में खुश होगा। ये पूरे बिहारी लोगों को अपमानित किया है और सब बिहारी लोगों, सब हिंदू हो या मुसलमान, सबको दलित हो मादलित, सबको पाकिस्तानी करार दिया है। याद में
5 चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के 4 चरण समाप्त हो चुके हैं। अंतिम चरण का चुनाव 5 नवंबर को होना है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष कुमार मिश्र मतदान के ट्रेंड को विस्तार से बताते हैं।
आज चौथा चरण जो हुआ, करीब करीब आज बिहार के मतदाताओं ने तय कर दिया कि बिहार में किसकी सरकार होगी। बहुत उत्साह रहा है, सुबह से ही कतार लगी रही है। दावे दोनों के अलग अलग हैं ज़रूर, ये चुनाव कुछ डिफरेंट है। ये चुनाव निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये तय करने वाला चुनाव है। महिलाओं की कतार खास तौर से इस बार विशेष तौर पर देखी जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, साइकिल योजना, उस योजना को लागू हुए 8 साल हो गए। उस लॉट में जिन लड़कियों ने साइकिल ली, पहली बार वो वोट कर रही हैं। मुझे लगता है ये चुनाव बदलाव का चुनाव है।
चुनाव निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। अब देखना यह है कि कौन सा गठबंधन युवा और महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में किस हद तक गोलबंद कर पाया है। यह 8 नवंबर को तय हो जाएगा। नीरज सहाय, BBC पटना।
और अब चलते हैं सीधे पटना, जहां BBC संवाददाता पंकज प्रियदर्शी हमसे सीधे जुड़े हैं फोनलाइन के जरिए। तो पंकज जी, चौथा चरण आज पूरा हुआ और बस एक दौर का मतदान और बचा है, यानी बिहार अपने जनादेश से कहीं तो सिर्फ एक कदम और दूर है। आप क्या कहेंगे, आपने जिस तरह से देखा है पूरा चुनाव?
देखिए अशोक, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कड़ा मुकाबला चल रहा है दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच। और जैसा कि आपने कहा, चार चरण पूरे हो चुके हैं, पांचवा चरण तो है, लेकिन अब सबका ध्यान 8 तारीख को है, जिस दिन काउंटिंग होनी है, सबकी नजर उस दिन होगी। लेकिन पांचवें चरण की अगर बात करें अशोक, तो 57 सीटों पर मतदान होना है, 57 विधानसभा सीटों पर। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने एक अखबार के साथ इंटरव्यू में बहुत पहले कहा था कि पांचवें चरण पे भाजपा का उतना कह सकते हैं जोर नहीं हो, पहले ही से उन्होंने, जिसको विपक्ष ने भुनाया था कि भाजपा शुरू से ही पहले ही हार मान रही है। तो ये देखा जाए कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र में चुनाव होने और साथ में दरभंगा में भी चुनाव होने हैं। तो सीमांचल में आपको जैसा पता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहली बार बिहार में चुनाव लड़ रही है। साथ में कोसी क्षेत्र में पप्पू यादव ने जो नई पार्टी लॉन्च की थी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद, तो उनका भी एक तरह से एसिड टेस्ट है, इम्तिहान है उस क्षेत्र में। तो भाजपा थोड़ा सा बैकफुट पर है, लेकिन महागठबंधन का दावा है कि मुसलमान वोट जो है उनके साथ हैं, और पप्पू यादव जो यादव और पिछड़े वर्ग के वोटों का दावा कर रहे हैं उसमें भी मतलब उसे मार सकते हैं। तो इस तरह ये मुकाबला समझिए कि 3-4 कोण से ये महत्वपूर्ण है।
जी, आज जैसा कि हमने सुना कटिहार में प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने कहा कि उनके पास 3 सूत्र हैं, पढ़ाई, कमाई और दवाई। बात लगातार वो विकास की कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी सुना कई और मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है और कई और बयान के मुद्दे हैं। तो पांचवें चरण इस लिहाज से कितना अहम माना जाए, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी के लिए खासी चुनौती है उधर?
बिल्कुल, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की इस दौर में काफी रैलियां होने वाली है। देखिए जैसा आपने कहा, साथ में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाया कि वो जंतर मंतर वाली बात, जो एक तांत्रिक के साथ उनका वीडियो आया था, आपको याद होगा
जी।
लेकिन उसके जवाब में एक और वीडियो जारी हुआ, एक तस्वीर जारी हुई है जिसमें बेजान दारू वाला जो हाथ देखते हैं,
नरेंद्र मोदी जी का हाथ देखते
हैं, दिखाया जा रहा है और नरेंद्र मोदी हाथ देख रहे हैं, उसको लेकर महागठबंधन के नेता टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि आखिरी चरण में एकाएक विकास की बात हो जाएगी, अब ये पूरा चुनाव जातिगत आधार पे और इस तरह की बयानबाजियों के आधार पर प्रमुखता से लड़ा जा रहा है। तो इस चरण में मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा गुणात्मक या ड्रास्टिक बदलाव आने वाला है। ये चुनाव पूरे दोनों गठबंधनों के लिए, वो दोनों ऑल आउट जाएंगे और इस ऑल आउट जाने में शायद और भी कई लक्ष्मण रेखाएं पार की जाएंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, तंत्र मंत्र दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। पंकज प्रियदर्शी पटना से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
और उधर रांची में 3 दिन से चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक आज खत्म हो गई। इस मौके पर संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के मामले पर संघ अड़िग है। साथ ही उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर फिर सफाई देते हुए कहा कि संघ जो है आरक्षण विरोधी नहीं है। देश में बढ़ रही असहिष्णुता का हवाला देते हुए पुरस्कार लौटाने वालों को उन्होंने हताश बताया, साथ ही हाल की हिंसक घटनाओं की निंदा भी की।
ऐसी जो जो भी घटनाएं हुई है इसकी वास्तव में तो हम तो निंदा करते हैं, ऐसी घटनाएं घटना समाज के लिए अच्छी बात नहीं, लेकिन इसके गहराई में जाने की आवश्यकता जरूर हम मानते हैं। वास्तव सामने आना चाहिए। ऐसी कई घटनाओं को लेकर जब संघ का नाम जुड़ा और जब गहराई में गए तो उसकी असत्यता ही सामने आई है, उसमें कोई सत्य साबित नहीं हुआ है।
ये थे संघ के सर कार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी। और अब हमारी खास सीरीज फैला उजियारा, प्रोफेसर सुनील खिलनानी के श्रृंखला इनकार्नेशन का हिंदी रूपांतरण। आज इस कार्यक्रम की 17वीं कड़ी में बात होगी मलिक अंबर की, जिन्होंने एक गुलाम से किंग मेकर तक का सफर तय किया। ये मलिक अंबर ही थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में शिवाजी से कहीं पहले युद्ध की नई तकनीक अपनाई, और वो थी छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध। पेश कर रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
बरसों पहले गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाना था। भारतीय टीम के सामने थी विवियन रिचर्ड्स की कप्तानी में वेस्टइंडीज की महान टीम। मैंने भी टिकट ली और मैच देखने जा पहुंचा, लेकिन जब वापस लौटा तो ना तो मुझे स्कोर याद था और न ही किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन। याद रही तो बस अहमदाबाद के दर्शकों की वो प्रतिक्रिया जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा।
जैसे ही वेस्टइंडीज की टीम मैदान में उतरी, बंदरों जैसी आवाजें आसमान में गूंजने लगी। स्टैंड से केले के छिलके फेंके जाने लगे। उस टीम के सारे खिलाड़ी स्तब्ध रह गए, जिसे वेस्टइंडीज क्रिकेट इतिहास की महानतम टीम माना जाता है। भारतीयों के मन में अफ्रीकी मूल के लोगों के प्रति तिरस्कार का भाव रहता है। इस नस्लवाद से गांधी जी भी अछूते नहीं थे। उनके दक्षिण अफ्रीका प्रवास से ये जाहिर हुआ है, लेकिन इस बारे में भी ज्यादा चर्चा नहीं होती। आज अफ्रीकियों के लिए जिस अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है हबशी। मलिक अंबर एक हबशी था, जिसे व्यापारी दक्षिण भारत के दक्कनी पठार क्षेत्र में लेकर आए। आज के भारत में मलिक अंबर को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो राजाओं की किस्मत बना बिगाड़ रहा था और उत्तरी भारत के विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के लिए लगातार चुनौती बना हुआ था। 17वीं सदी के शुरू में बनी मलिक अंबर की एक पेंटिंग है। पेंटिंग विचलित कर देने वाली है। मलिक अंबर का कटा हुआ सिर भाले की नोक पर टंगा है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी हैं और ग्लोब पर खड़ा एक मुगल तीरंदाज मलिक अंबर के चेहरे पर निशाना साधे हुए है। मुगल तीरंदाज के कपड़े सुर्ख लाल रंग के हैं। उसकी कमर पेटी में जवाहरात जड़े हैं और वो सफेद जूतियां पहने हैं। फरिश्ते उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। रिचर्ड ईटन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
Well, it's a remarkable painting and it's filled with symbolism.
ये एक असाधारण पेंटिंग है, प्रतीकात्मकता से भरपूर। अंबर के कटे सिर के आसपास जिंदा और मुर्दा उल्लू हैं। इस प्रतीक का इस्तेमाल अंबर को अंधकार और विद्रोह से जोड़ने के लिए किया गया है। ये पेंटिंग जहांगीर के ख्वाब को बयां करती है। वो हकीकत में युद्ध भूमि पर जो नहीं कर पाया उसे पेंटिंग के जरिए हासिल करना चाहता था।
तो क्या ये चित्र मलिक अंबर के भयावह अंत का बयान है? इस सवाल का जवाब बाद में। पहले जरा मलिक अंबर के जीवन की कहानी सुनते हैं। हबशी शब्द आज के इथोपिया के पुराने नाम अबिसिनिया से निकला है। मलिक अंबर का जन्म 16वीं शताब्दी के मध्य में अबिसिनिया में हुआ था। उनके बचपन का नाम चापू था और शायद उसके अपने ही गरीब माता पिता ने उसे बचपन में ही गुलाम बनने के लिए बेच दिया था। जब दास प्रथा का जिक्र होता है तो हमें 16वीं और 17वीं सदी में अफ्रीका से पश्चिमी देशों की ओर जाते जहाजों पर लदे हुए गुलाम याद आते हैं। नई दुनिया में कपास और तंबाकू की खेती के लिए बहुत ज्यादा गुलाम मजदूरों की जरूरत थी और इन जहाजों में कैद इंसानों की नियति थी ये गुलामी। महीन भारतीय वस्त्रों के बदले मलिक अंबर जैसे गुलाम हिंद महासागर के रास्ते पूरब की ओर भेजे जाते ताकि वो दक्कन की शाही और निजी सेनाओं को मजबूत बना सके। अबिसिनिया से दक्कन तक की मलिक अंबर की यात्रा कई जगह बेचे खरीदे जाने के बाद पूरी हुई। पहली बार गुलाम बनने के बाद उसे बगदाद भेजा गया। वहां उसे इस्लाम की दीक्षा दी गई और एक नया नाम मिला। वो बहुत होशियार था और उसके मालिक ने उसे वित्तीय प्रबंध और प्रशासन की शिक्षा दी। पहले स्वामी की मृत्यु के बाद मलिक अंबर को फिर से बेचा गया और शायद कई बार बेचा गया। फिर शायद किशोरावस्था में उसके कई हमवतनों के साथ उसे एक अरब नौका डाऊ में सवार कर अरब सागर के पार आज के महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भेज दिया गया। अभी मैं एक पादवानी नौका पर सवार हूँ। ये डाऊ की ही शैली में बनी है और मुंबई से 50 मील दक्षिण में कोंकण तट के टापू पर बने किले की ओर जा रही है। मलिक अंबर के नए मालिक का नाम था चंगेज खान, जो दक्कन की कमजोर हो रही निजाम शाही सल्तनत का पेशवा या मुख्यमंत्री था। चंगेज खान अपने हबशी गुलामों को आत्मविश्वास के पूरे अवसर देता था। वो खुद भी कभी हबशी गुलाम था। जल्द ही वित्तीय प्रबंध और इंजीनियरिंग कौशल में दक्ष ये गुलाम अपने मालिक से राजनीतिक दांवपेच भी सीखने लगा। चंगेज खान मलिक अंबर का आखिरी मालिक था। यह मलिक अंबर की दास्तान गुलामी से जुड़ी एक और मान्यता को ध्वस्त करती है कि आजाद इंसानों को समाज में ऊंचे पायदानों तक पहुंचने के जो मौके हासिल हैं, वो किसी गुलाम को हासिल नहीं होते। अपने मालिकों के जीवन में इन दासों की खास जगह थी। इनके मालिक उन्हें पढ़ाते थे, पालते पोसते थे और लगभग अपने बेटों जैसा ही बर्ताव करते। बदले में इन गुलामों को पूर्ण स्वामी भक्त होना होता था। उनसे वादा किया जाता था कि मालिक की मौत के बाद वो आजाद होंगे। 1575 में चंगेज खां की मौत हो गई। उस वक्त मलिक अंबर महज 24-25 साल का था। वो बुद्धिमान था, महत्वाकांक्षी था, करिश्माई व्यक्तित्व का स्वामी था, बेहद कुशल था और अब तो वो आजाद भी था।
वाओ, इतना निखार, क्या लगाया?
फेयर एंड लवली भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों में से एक है। ये त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम है। इसके टीवी विज्ञापनों में ऐसी युवतियां और युवक दिखाए जाते हैं जिनको तब तक नौकरी नहीं मिलती या जिनकी तब तक शादी नहीं हो पाती जब तक कि वो फेयर एंड लवली लगाकर दमकते हुए गोरे रंग के नहीं हो जाते। अगर टीवी या फिल्मों में दिखाई गई छवियों के आधार पर कोई राय बनाई जाए तो लगेगा कि ज्यादातर भारतीय गोरी रंगत वाले हैं, लेकिन किसी भी शहर की सड़कों पर चलते फिरते इंसानों पर नजर डालते ही सच्चाई सामने आ जाती है। गोरेपन की इस चाहत की वजह से ही हम पूर्ववर्ती दासों के वंशजों का अस्तित्व नजरअंदाज कर देते हैं। वो मुख्यतः पश्चिमी भारत में शेष समाज से अलग थलग छोटे छोटे समुदायों में रहते हैं। वो भारतीय समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं या शायद अलग रखे जाते हैं। आजाद होने के बाद मलिक अंबर ने अगले करीब 20 साल स्वामी भक्त सिपाहियों की फौज खड़ी करने में लगाए। विडंबना यह है कि उसमें से कई इथोपिया के हबशी थे जिन्हें गुलामी की प्रचलित शर्तों पर रखा गया था। 1595 तक उसके अधीन एक विशाल सेना थी जिसमें घुड़सवार भी थे। मलिक अंबर जिस सुल्तान की सेवा में था वो मलिक अंबर पर बहुत निर्भर था। शहंशाह अकबर की चतुराई भरी रणनीतियों से दिन ब दिन शक्तिशाली होता मुगल साम्राज्य उसकी सल्तनत की सीमाओं तक आ पहुंचा था। मुगल बादशाहों ने दक्कन के कई प्रमुख शहरों और किलों पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों को अपने कब्जे में नहीं कर पाए थे। बड़गिरीरी नाम से मशहूर गुरिल्ला युद्ध तकनीक के सहारे मलिक अंबर उनकी राह में अड़चनें डालता रहा।
So this is the terrain of the contested countryside. I'm looking out across a steep ravine here.
ये वो ग्रामीण इलाका है जहां मलिक अंबर और मुगलों के बीच कई लड़ाइयां हुईं। लेकिन प्रशासक होने के नाते ये इलाके मलिक अंबर के जाने पहचाने थे। उसने स्थानीय मराठों की युद्ध शैली में भी दक्षता हासिल की थी। इस ऊंचे नीचे इलाके की अच्छी जानकारी होने के कारण वो अपने दुश्मनों की रसद का रास्ता बंद कर सकता था। उसकी फौज में अब करीब 50,000 सैनिक थे। उसकी चपल और फुर्तीली घुड़सवार सेना मुगलों को परेशान कर डालती, उन्हें खाइयों तक खींच लाती और नीचे धकेल देती।
In 1610, Malik Amber captured the fort here at Daulatabad, set high up on a hill.
1610 में मलिक अंबर ने दौलताबाद के इस बेहद सुरक्षित पहाड़ी किले पर कब्जा कर लिया। सुल्तान से अपनी बेटी की शादी कर मलिक अंबर पहले ही एक शानदार चाल चल चुके थे। इस बेटी ने उन्हें बताया कि सुल्तान की फारसी मूल की बेगम ने मलिक अंबर पर तंज कसा है कि वो महज एक गुलाम है, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए मलिक अंबर ने सुल्तान और उसकी फारसी बेगम दोनों को जहर दे दिया। सुल्तान की मौत के बाद मलिक ने सुल्तान के 5 साल के बेटे को गद्दी पर बैठाया और राज करने लगा। अब वो महज पेशवा या मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि असली शासक भी था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अकबर की मौत के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बना और राजगद्दी के साथ साथ इथोपियाई मलिक अंबर के लिए नफरत भी उसे विरासत में मिली। जहांगीर मलिक अंबर से पागलपन की हद तक नफरत करता था। जहांगीर के संस्मरणों में मलिक का जिक्र बदकिस्मत अंबर, विद्रोही अंबर, स्याह किस्मत अंबर के रूप में होता है। जहांगीर ने अपना चित्रण रोशनी के ऐसे स्रोत के रूप में करवाया जो अपनी जनता में शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहता है, और वो मलिक अंबर को ठीक इसका उल्टा दिखाना चाहता था। चलिए अब फिर उसी पेंटिंग की बात करें जिसमें भाले पर टंगे मलिक अंबर के कटे हुए सिर पर राजसी वस्त्रों में सजा धजा तीरंदाज निशाना साध रहा है। कौन है ये तीरंदाज? ये हैं खुद बादशाह जहांगीर। बादशाह ने जब 1615 में इस चित्र को बनाने का आदेश दिया था तो मुगल सेना को मलिक अंबर का पीछा करते करते 20 साल बीत चुके थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जहांगीर अंबर को कभी युद्ध में हरा नहीं पाया और उसके धड़ विहीन मस्तक पर निशाना साधने का तो सवाल ही नहीं। तो ये पेंटिंग क्यों, रिचर्ड ईटन कहते हैं।
So I think what Jahangir is...
ये पेंटिंग जहांगीर के ख्वाब को बयां करती है। वो हकीकत में युद्ध भूमि पर जो नहीं कर पाया उसे पेंटिंग के जरिए हासिल करना चाहता था।
मलिक अंबर की सफल गुरिल्ला युद्ध शैली को मराठा नेता शिवाजी ने न केवल अपनाया बल्कि उसे संवारा भी। शिवाजी जो आज इस क्षेत्र और पूरे राष्ट्र के नायक हैं, ऐसे हिंदू योद्धा जिन्होंने मुगलों की सत्ता को चुनौती दी। लेकिन उससे पहले यही काम मलिक अंबर ने किया था, पर वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले स्वदेशी नायक नहीं थे। वो मौका परस्त और सत्ता के लिए उद्यम करने वाले इथोपियाई थे। तो इस दास्तान से एक और मान्यता ध्वस्त होती है और वो ये कि दक्षिण भारत में मुगलों का विस्तार रोकने वाली प्रमुख हस्तियों में केवल स्थानीय राजा ही नहीं बल्कि एक इथोपियाई गुलाम भी था। मलिक अंबर के समय में दुनिया में बेहद निष्ठुरता और खून खराबे का माहौल था, फिर भी कुछ मामलों में ये आज के भारत के मुकाबले ज्यादा ग्रहणशील और सबके लिए खुली थी। तब लोगों में पूर्वाग्रह भी कम थे। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में इतिहासकार सिल्विन डियक भारत समेत विश्व भर में अफ्रीकी गुलाम और उनके वंशजों के बारे में अध्ययन कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी इस ताकीद से ये कहानी पूरी की जाए कि मलिक अंबर के जीवन की तरह भारतीय इतिहास हमेशा प्रगति का, आगे बढ़ने का ही इतिहास नहीं रहा है।
African men who were enslaved and then, you know, became rulers.
गुलाम बनाए गए अफ्रीकी शासक भी थे और वे मुस्लिम थे। हिंदू बहुसंख्यकों के बीच वे अल्पसंख्यक थे और उन्होंने हिंदुओं पर शासन भी किया। इसमें ना उनकी नस्ल आड़े आई, ना उनका मूल, ना विदेशी होना और ना ही उनका मजहब। ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि उस जमाने में भारत में इतनी सहनशीलता, विचारों का इतना खुलापन था जो आज दिखाई नहीं देता। उस दौर में जो कुछ हुआ वे आज के लिए सचमुच एक सबक है जिसे न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को याद रखना चाहिए।
फैला उजियारा में बात हो रही थी मलिक अंबर की और अब खेलों की तरफ चलते हैं आदेश जी के साथ।
जी अशोक जी, अगर टेनिस की बात की जाए तो भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी और युगल वर्ग में दुनिया की नंबर एक रैंकिंग वाली सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने सिंगापुर में आयोजित हुए WTA फाइनल्स का फाइनल जीत लिया है। महिला युगल वर्ग के फाइनल में उन्होंने स्पेनिश जोड़ी गार्बिने मुगुरुजा और कार्ला सुआरेज नवारो को 6-0, 6-3 से मात दी। ये इस साल इस जोड़ी का 9वां खिताब है।
खासी कामयाब जोड़ी,
बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस पूरे साल भर। उधर शतरंज के बिसात पर स्पेन में जारी बिलबाओ मास्टर्स फाइनल शतरंज टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 5वें दौर में अमेरिका के विस्तीसो से अपनी बाजी ड्रॉ खेली। इसके साथ ही विश्वनाथन आनंद के लिए अपना खिताब बचाए रखना मुश्किल हो गया क्योंकि उनके फिलहाल केवल 4 अंक हैं और अब केवल एक ही बाजी बची है। उधर शारजाह में आज से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, जहां आज मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी पहली पारी 234 रन पर सिमट गई और जिसके जवाब में आज जब खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए थे।
बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 7 जिलों की 55 सीटों के लिए मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार आज चारों चरणों में सबसे ज्यादा 57.59% वोटिंग हुई। तुर्की में पिछले 5 महीनों में दूसरी बार आम चुनाव के लिए मतदान हुआ। ये चुनाव राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की AKP पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ग्रीस में तटरक्षक दल ने कहा है कि तुर्की से प्रवासियों को ला रही एक नाव के डूब जाने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को धर्मनिरपेक्ष प्रकाशक की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से चरमपंथी संगठन अलशबाब को खदेड़ने वाले सैन्य कमांडर की एक होटल में हमले में मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में अभी के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम घटना चक्र में आपसे मुलाकात होगी अब से ठीक 1.5 घंटे बाद। जरूर सुनिएगा, होगी खास रिपोर्ट दिल्ली से, जहां तर्कवादी विद्वान नरेंद्र दाभोलकर की जयंती के मौके पर कई बुद्धिजीवी और हाल ही में विरोध स्वरूप अपने पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार जुटे। साथ ही बात होगी तुर्की के चुनावों की भी। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अशोक कुमार को अनुमति दें। नमस्कार।